मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 24 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज सोमवार है और सोमवार को हम लोग अक्सर दो टॉपिक लिया ही करते हैं। यदि और कोई दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक न दिखाई दे या न आ जाए, उसमें एक होता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के बारे में कुछ बातें की जाएं, और दूसरा टॉपिक फिलहाल जो चल रहा है वो कोरोना को लेकर के है, कोरोना 19। तो आइए आज कोविड-19 से इसकी शुरुआत करते हैं, और फिर मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे जो कोचिंग के बारे में आपको सोचना चाहिए, किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए, इस पर कुछ बातें करूंगा। दोस्तों, कोविड-19 के हम लगातार एक बहुत ही सकारात्मक फेज में पहुंचते चले जा रहे हैं। सकारात्मक फेज कहने का मतलब है कि भले ही संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही संक्रमित लोगों की, लेकिन उसी के साथ ही साथ हमें सफलता भी मिलती चली जा रही है और कहीं ना कहीं कोरोना पर हमारा नियंत्रण भी बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए कि जो मृत्यु दर है वो गिरकर 1.86% हो गई है। तो ये मतलब जो मृत्यु दर पर आप यूं कह लीजिए कि काफी अच्छा नियंत्रण हमने हासिल कर लिया है। हालांकि उद्देश्य है इसको 1% तक ले आना, लेकिन देखिए कि कब इसमें सफलता मिलती है, लेकिन हम उस दिशा में कम से कम बढ़ तो रहे हैं, तो ये बहुत ही राहत पहुंचाने वाली बात है। जो लोग संक्रमित पाए जाते हैं उनके स्वस्थ होने की दर भी काफी अच्छी हो गई है, 75% हो गया है, और 75% की दर भी काफी अच्छी मानी जा रही है। आपको ध्यान होगा कि कुछ ही समय पहले तक हमने इसकी शुरुआत 60% से की थी, और अब हम 60% से 75% पर पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो दिशा है वो बहुत बेहतर है। और देखिए कि जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं, इसका एक रीजन भी ये कहा जाता है कि चूंकि हम टेस्ट बहुत ज्यादा कर ले रहे हैं, तो इसीलिए भी नियंत्रण हमारा होता चला जा रहा है। पहले जहां हम 10 लाख पर मुश्किल से 10,000 लोगों का टेस्ट कर रहे थे, अब हमारी टेस्ट करने की जो औसत है सामान्य तौर पर लगभग 25,000 के करीब पहुंच गया है, जो काफी बेहतर है। और यह माना जा रहा है कि जितने ज्यादा हमारी टेस्टिंग बढ़ती चली जाएगी, उतना ही कोरोना पर हमारा नियंत्रण बेहतर होता चला जाएगा। एक और भी अच्छी बात जो आज के अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगी, हालांकि ये बात न्यूज में नहीं थी, वो ये कि अब जो टेस्टिंग हो रही है, उस टेस्टिंग में जो सक्रिय मरीज मिल रहे हैं, जो पेशेंट मिल रहे हैं आप कह लीजिए, वो लगभग 5% के आसपास हो गए हैं। 5%, जुलाई में यह दर 12% की थी। जुलाई लास्ट तक यह दर 12% थी। अब देखिए कि अगर 12% से गिरकर अब ये 7% पर आ गई है, तो ये काफी अच्छी बात है। भले ही टोटल नंबर ऑफ पेशेंट दिखाई दे रहे हैं ज्यादा, लेकिन प्रतिशत कम हो गया, तो 7% पर आ गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि अगर हम 5% की दर पर पहुंच जाते हैं, दुनिया का कोई भी देश 5% तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो महामारी है ये नियंत्रण में है। और देखिए, अगर कोई महामारी नियंत्रण में आ जाती तो फिर डरने की बात नहीं होती। इसका मतलब है कि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि पेशेंट आते रहेंगे, हम उनका इलाज कर सकेंगे, हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास डॉक्टर्स की सुविधाएं हैं, तो वो हमारे नियंत्रण में है। तो देखिए, हम 7% पर आ गए हैं, हो सकता है कि 5% पर भी पहुंच जाएं। अभी हम एक प्रकार से अगस्त के ढलान पर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर मिड तक आते आते शायद हम 5% के टारगेट को अचीव कर लेंगे। आपने हमारे एक स्वास्थ्य मंत्री का एक स्टेटमेंट भी सुना होगा न्यूज में कि किस तरीके से जो 3 वैक्सीन है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस साल के आखिरी तक शायद हम वैक्सीन भी बना लेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो यूं समझिए कि एक प्रकार से इससे मुक्ति मिल ही जाएगी। इसके साथ ही आपने न्यूज में और अखबारों में और भी कुछ पॉजिटिव बातें सुनी होंगी, जैसे अभी ये सोचा जा रहा है कि शायद केंद्र सरकार अब इस तरह की घोषणा करेगी कि समारोह भी किए जा सकेंगे, लेकिन समारोह के लिए वो कुछ गाइडलाइंस जारी करेगी। वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक हॉल है जिसमें समारोह होना है और उसमें 200 लोगों की कैपेसिटी है, तो उसमें आप 100 लोगों को बुला सकते हैं। तो अगर समारोह शुरू हो गए, इस तरह की चीजें होने लगी, तो डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो डायरेक्शन की है कि इसे समझ में आ रही है अब चीजें कि जो कोरोना है वो धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आता चला जा रहा है। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि सिनेमा हॉल खुल जाएं और कार्यक्रम शुरू होने लगें, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में अभी तक सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि वो बच्चों से जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स भी उसमें शामिल हैं। पेरेंट्स की जैसी डिमांड होगी, सिचुएशन जैसी होगी, उसके आधार पर उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सीधे सीधे आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से भी जुड़ा हुआ है, जो अभी 4 अक्टूबर को होने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यह कि आपको धीरे धीरे जो कोरोना के दबाव को महसूस आप कर रहे हैं, उससे उबरते चले जाना चाहिए, और आपने उबरना शुरू भी कर दिया होगा। जहां तक कोरोना और सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन का सवाल है मित्रों, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कठिन है। या इस बीच में एक दो दिन पहले एक लेटर काफी कुछ न्यूज में आ रहा है कि एक एडवोकेट हैं, उन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिख करके और ये मांग की है कि 4 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाले हैं उन्हें स्थगित कर दिया जाए। हो सकता है कि और लोगों ने भी इस तरह के पत्र लिखे हों, लेकिन जब तक आप स्वयं प्रेस के पास नहीं जाते तो प्रेस को पता नहीं चलता है, तो प्रेस उसे टेकअप नहीं करता है, लेकिन इस पत्र को टेकअप किया गया है। यहां मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी अपनी ओर से सलाह देना चाहूंगा कि ये जो पत्र लिखा गया है, इसको आप इस तरह से लेकर के न चलें कि यूपीएससी इसको मानने के लिए बाध्य ही है। क्योंकि देखिए, अभी मैंने जो एक स्थितियां बताई है कोरोना की, वो धीरे धीरे नियंत्रण में आती चली जा रही है। जैसे सरकार ने अगर ये डिक्लेयर कर दिया, केंद्र सरकार ने, कि जो भी समारोह स्थल हैं उसकी जो कैपेसिटी है उसके आधे के तहत समारोह आयोजित किए जा सकते हैं। ठीक, सिनेमा हॉल में अगर 500 की कैपेसिटी है तो आप 250 टिकट बेच सकते हैं, है ना। होटल की होटल का एक हॉल है जिसमें 1000 लोग आते हैं, तो ठीक, उसमें 500 लोगों को आप रख सकते हैं। मान लीजिए कि ये जारी कर दिया और अगर इसको यूपीएससी ने टेकअप कर लिया और सरकार से परमिशन मिल गई, या जो भी उनका अपना सिस्टम हो, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, तो हो सकता है कि यूपीएससी भी ऐसा सोचे। क्योंकि आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट तो धीरे धीरे खुलते चले जा रहे हैं, है ना, अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू हो रही हैं, ट्रेन भी धीरे धीरे मुझे लगता है कि काफी कुछ शुरू हो जाएंगी, फ्लाइट की भी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन के दिन हैं, जो आपके प्री एग्जामिनेशन के, उसमें अभी कितने दिन बाकी हैं, 1 महीने 10 दिन तो बाकी हैं, तो 1 महीने 10 दिन में जिस तरह से चीजें बेहतर होती चली जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरी सिंसियर एडवाइस फिलहाल यही है कि आप अपनी तैयारी को धीमा न पड़ने दें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके हाथ से तो मौका चला गया। तो इसीलिए मित्रों, थोड़ा सा और धैर्य रखिए और अपनी चुस्ती को पहले की तरह ही बनाए रखिए, ये मेरी सिंसियर एडवाइस है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के तहत मैं थोड़ा सा कोचिंग के बारे में, आपको क्या निर्णय लेना चाहिए इस पर बात करूंगा, यदि आप महसूस करते हैं तो। देखिए, अब स्थितियां काफी कुछ क्लियर हो गई हैं, बकायदे यूपीएससी ने प्री एग्जामिनेशन 2021 की डेट घोषित कर दी है, वो जून में होने वाली है, मिड जून में, और अभी हम अगस्त खत्म होने पर बात कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। और जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और जब आप इंस्टीट्यूशन में जाकर के कोचिंग लेने की स्थिति में आएंगे, तब तक आपके एग्जामिनेशन की डेट काफी नजदीक आ चुकी होगी। तो अभी जो विकल्प मुझे जो दिखाई दे रहा है, वो डेफिनेटली ऑनलाइन कोचिंग का एक विकल्प है। और आप एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, इसे आप एक अच्छा दौर कह सकते हैं, कि ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है। 1-2 संस्थाओं के द्वारा नहीं, बहुत सारी संस्थाओं ने अब ऑनलाइन कोचिंग देनी शुरू कर दी है, जिसमें वे संस्थाएं भी शामिल हैं जहां आप इंस्टीट्यूशनल कोचिंग लेने के बारे में सोच रहे होंगे कि मैं वहां जाऊंगा और एडमिशन लेकर के पढ़ाई करूंगा, उनके भी ऑनलाइन कोचिंग शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि अगर आपके दिमाग में ये बात है कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए, तो फिर ऑनलाइन के बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर पूरी गंभीरता से आप निर्णय लें। गंभीरता से निर्णय कहने का सवाल है कि ऑनलाइन कोचिंग की एक बहुत अच्छी बात है कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, जहां तक मैं समझता हूं, अपने अपने डेमो लेक्चर्स डाले हुए हैं कि देखिए हमारे लेक्चर का ये स्तर है, हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से बता रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल कोचिंग में जाते हैं तो आपको क्लास में बैठने की परमिशन नहीं देते कि आप 2-3 दिन क्लास में बैठ करके देख लीजिए कि हम किस तरह के लेक्चर्स दे रहे हैं, और इसके बाद फिर आप निर्णय लीजिए कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। यहां तो आप कर सकते हैं ऐसा, तो आपको इत्मीनान से बकायदे जिन कोचिंग्स को भी आप ठीक समझते हैं उनके डेमो लेक्चर्स देखें, कंपैरेटिवली उन पर अच्छे से विचार करें। ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आपके कुछ फ्रेंड्स भी हैं तो आप सब मिलकर के उन लेक्चर्स को सुने, सुनने के बाद अच्छे तरीके से आपस में विचार विमर्श करें कि वो लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो आपके अंदर कैपेसिटी पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको वो रोचक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपके लिए वो फायदेमंद होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद आप निर्णय लें। दोस्तों, निर्देशन सही हो ये बहुत जरूरी है, केवल निर्देशन ही जरूरी नहीं है, निर्देशन का सही और सटीक होना भी उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए आप थोड़ा वक्त लगाएं, आपको एक सप्ताह लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं तो गलत रास्ता कभी भी सही मंजिल तक हमें नहीं पहुंचा सकेगा। सीधी सी बात है कि आप थोड़ी सी यात्रा करने के बाद जब आपको एहसास होगा कि रास्ता गलत है या वो रास्ता ज्यादा बेहतर था, तो फिर पता लगा कि आप अपना ट्रैक बदल रहे हैं, आप अपना रास्ता बदल रहे हैं, तो वो समय तो आपका खराब हो गया। इसलिए बेहतर है कि आप हड़बड़ी न दिखाएं, धैर्य रखें, पूरे इत्मीनान के साथ कोचिंग के बारे में निर्णय लें। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह आगरा से, विश्वनाथ जी आपका बहुत ही भाव भरा पत्र मुझे मिला। तो सबसे पहली बात तो यह कि मैं आपकी माता जी को आपके माध्यम से अपना प्रणाम पहुंचाना चाहूंगा, आप मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहें। उन्होंने मेरे लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है उसे मैं आशीर्वाद स्वरूप लेता हूं, उनके प्रति मेरा आभार व्यक्त करें, और साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। अन्य मित्रों के नाम हैं आशीष कुमार मिश्र जेएनयू न्यू दिल्ली से, मोहित डागर लोकेश, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, शशांक पांडे और प्रियंका दुबे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।